हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम आठवां स्कंति अध्याय श्लोक संख्या 17। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यामनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनय तद्धाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधु वर्गेण या कपिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेम तुमर्थो महा श्रीचैतन्य महाप्रभुर्मतमिदं तथा ग्रह न परः। करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारि हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्व मृतुमेतदेव गोविन्द दामो धरमाधवेति। ब्रजे वसन्तं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां चदुकूलचोरम्। श्रीराधिकाय हृदयस्य चोरम् चोराग्यगण्यं पुरुषं नमामि। श्रीकृष्णश्यामं मनसा स्मरामि। मूकं कुरुतु वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणम्। ग्रन्थ श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। आठवां स्कंति अध्याय जिसका शीर्षक है गजेंद्र की समर्पण स्तुति श्लोक संख्या 17। इन अत्यंत ही अद्भुत शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। भगवान को अपनी प्रार्थना समर्पित करते हुए गजेंद्र कह रहे हैं, मादृक् प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो नयाय स्वांशेन सर्वतनु भृन्मनसि प्रतीत प्रत्यक्त्रिषे भगवते बृहते नमस्ते। मादृक् प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो लयाय स्वांशेन सर्वतनु भृन्मनसि प्रतीत प्रत्यक्त्रिषे भगवते बृहते नमस्ते। मादृक् प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो लयाय स्वांशेन सर्वतनु भृन्मनसि प्रतीत प्रत्यक्त्रिषे भगवते बृहते नमस्ते। शब्दार्थ मादृक्, गजेंद्र कहते हैं मादृक यानी मेरे समान, मैं कितना तुच्छ जीव हूँ और मैं भी आपकी प्रपन्न मतलब शरणागत, मेरे जैसा कोई तुच्छ जीव। आगे कहते हैं पशु, पशु मतलब जानवर, मेरे जैसा कोई जानवर भी यदि आपकी शरण में आ जाता है, आपकी शरणागति प्रपन्न मतलब शरणागति हो जाता है, आपको सरेंडर हो जाता है, आपकी शरण में आ जाता है। गजेंद्र तो वास्तव में पशु हैं, है ना, उनका तो शरीर पशु का है, परंतु यहां से हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि जैसे आज का ये जो पशु का मतलब होता है अज्ञानी, जिसके पास विवेक ना हो, जिसके पास यह ज्ञान नहीं है कि मैं वास्तव में कौन हूँ, मेरे जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है, जो वास्तविक ज्ञान से अनभिज्ञ है, जो अविवेकी है, उसको कहते हैं पशु। तो जीव वास्तव में अज्ञानी है, जीव वास्तव में पशु के समान है। शास्त्र तो यहाँ तक कहता है कि जो मनुष्य तीन तत्वों से बने शरीर को आत्मा मानता है, हम सब लोग जितने भी यहाँ पर जीव हैं, सब अपने शरीर को ही सब कुछ मानते हैं, है ना। जो शरीर के उपजातों को अपने संबंधी मानता है, ये जो शरीर के उपज हैं, शरीर से उत्पन्न की हुई के वे व्यक्ति हैं, उनको अपना मानता है और शरीर को आत्मा मानता है। जो अपनी जन्मभूमि को पूज्य मानता है और जो तीर्थ स्थानों में दिव्य ज्ञानवान व्यक्तियों से भेंट करने के लिए नहीं अपितु केवल स्नान करने के लिए जाता है। शास्त्र कहता है स एव गो खर, गो कहते हैं गऊ को और खर कहते हैं गधे को। तो शास्त्र कहते हैं वास्तव में वो गधा है, वो वास्तव में पशु है, वो वास्तव में मनुष्य नहीं है, जो कि अपने आप को आत्मा नहीं मानता, जो अपने आप को भगवान का अंश नहीं मानता, जो अपने आप को भगवान का दास नहीं मानता, क्योंकि वो अज्ञान के वश में है, इसलिए वो पशु है। पशु को हमने देखा है अक्सर कि किस प्रकार से पशु की संसार में, इस जगत में जो दशा होती है, उसको रस्सी से बांध कर रखा जाता है, वो अपनी इच्छा से कहीं नहीं जा सकता। वो जो मालिक होता है उसका, उसको गर्दन में रस्सी बांध देता है और वो आगे नहीं बढ़ सकता है। तो उसी तरह हम सब की जो दशा है इस जगत में, वास्तव में पशु जैसी ही तो है, हम सब भी बंधे हुए हैं। और वो पाश क्या है, पशु पाश, पाश कहते हैं बंधन को, और हमारा बंधन क्या है, और कुछ नहीं, अविद्या ही तो हमारा बंधन है। ये अविद्या ही हमारा सबसे बड़ा पाश है। और अविद्या क्या है? भगवान का ज्ञान नहीं है, हमें अपने वास्तविक अस्तित्व का ज्ञान नहीं है, इसीलिए बंधन लगा हुआ है। और विमोक्षणाय कौन हमें विमुक्त करा सकता है? यहाँ गजेंद्र कह रहे हैं माद्रिक प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय, कि मेरे जैसा पशु आपकी शरण में आ जाए तो उसको छुड़ाने के लिए मुक्ताय। मुक्ताय का मतलब होता है कि है ना, कोई ऐसा हो जो वास्तविक मुक्त हो, जो बंधा हुआ ना हो। इस संसार में हर कोई तो बंधा हुआ है, है ना, हर कोई अपने संबंधियों में, अपने देहात्म बुद्धि में, सब कोई झकड़े हुए हैं। तो इस बंधन से छुड़ाने वाला कोई ऐसा होना चाहिए जो बंधन में ना हो। तो ये भगवान की क्वालिटीज बता कर गजेंद्र बता रहे हैं कि केवल वही मुक्त है, और वही मुक्त है इसलिए वही हमें मुक्त करा सकते हैं। भगवान योग्यता रखते हैं जीव को इस भवसागर से छुड़ाने की, क्योंकि भगवान किसी में आसक्त नहीं है। जीव का बंधन कोई बाहर का नहीं है, जीव का बंधन अपने हृदय का है। देह के संबंधी और देह से, जितना देह और देह के संबंधियों की जीव चिंता करता है, भगवान से प्रेम करके भगवान की सेवा की उतनी चिंता नहीं करता, तो यही जीव का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। और भगवान क्योंकि किसी बंधन में नहीं है, वो मुक्ताय है, इसीलिए भगवान इस योग्य है कि जीव को इस बंधन से छुड़ा सके। क्योंकि कोई बंधा हुआ व्यक्ति होगा जिसके हाथ पीछे करके बांध दिए गए हों, जिसके पैर भी बांध दिए गए हों, और दूसरा जो सामने वाला व्यक्ति है वो भी इसी तरह बंधा हुआ है, उसके आजू बाजू जितने भी जीव हैं वो सब बंधे हुए हैं, तो उसको छुड़ाने के लिए कोई मुक्त जीव चाहिए, मुक्त व्यक्ति, मुक्त पुरुष की आवश्यकता है। तो बोलते हैं मुक्ताय। तो सोचो कि चलो मान लिया कि कृष्ण इस योग्य है कि जीव को इसके बंधन से छुड़ा सके, क्योंकि जीव जब तक भगवान में मन नहीं लगेगा तब तक संसार का आकर्षण कम नहीं होगा। जब भगवान में मन लग जाएगा, भगवान कहते हैं भगवत गीता में, रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टा निवर्तते। तो मानो कि भगवान के प्रति जब तक जीव का आकर्षण उत्पन्न नहीं होगा, तब तक उसको भौतिक वस्तुओं और भौतिक व्यक्तियों की ओर आकर्षण बना रहेगा। केवल भगवान ही इस भौतिक बंधन से जीव को, भौतिक पाश से, पशुपाश से मुक्त करा सकते हैं। लेकिन क्यों कराएं? चलो ठीक है, मान लिया कि उनके अंदर योग्यता है, वो मुक्त है और केवल वही मुक्ति दिला सकते हैं, तो क्यों कराएंगे वो जीव को? हर एक जीव 84 लाख योनियां हैं, उनके अंदर करोड़ों करोड़ जीव हैं, तो भगवान भला क्यों हर एक की फिक्र करे और उसे पशुपाश से, उसे अपने इस बहुबंधन से छुड़ाए? तो उसके लिए बता रहे हैं भूरी कर्माय, भूरी करुणाय। भूरी का मतलब होता है बहुत कृपालु है, बहुत बहुत इतनी कृपा है भगवान के अंदर कि वो करुणा का समुद्र है। केवल करुणा ही तो है भगवान के अंदर। भूरी करुणा है मतलब भगवान के अंदर इतनी करुणा है कि कोई ऐसा समय नहीं था जब भगवान के अंदर करुणा कम हो, कोई ऐसा समय नहीं है और ना ही कभी कोई ऐसा समय आएगा जब भगवान की करुणा समाप्त हो जाए। भगवान की करुणा की कोई सीमा नहीं। भूरी करुणा है मतलब इस संसार में जितने भी जीव हैं उनके अपराधों को एक साथ कर दिया जाए। तो जैसे एक चिंगारी होती है ना, वो चिंगारी यदि ये चाहे कि मैं वो समुद्र को गर्म करना चाहती हूँ, तो चिंगारी जैसे ही समुद्र के अंदर जाएगी उसी समय नष्ट हो जाएगी। तो जीव के अंदर अपराध करने की इतनी क्षमता नहीं है जितना कि भगवान क्षमा कर सकते हैं। जीव इतने अपराध कर ही नहीं सकता, कभी कोई ऐसा जीव इतने, उसके पास अपराधों का इतना भोज हो ही नहीं सकता कि जो भगवान क्षमा ना कर सके। जैसे अगर कोई सोचे कि अभी सूर्य निकलेगा, मैं इतना अंधेरा जमा करूंगा, इतना अंधेरा जमा करूंगा, इतना अंधेरा हो जाएगा एक जगह पर कि सूर्य निकले और वहां पर रोशनी ना हो जाए, मतलब वो अंधेरे को जमा करके रख दे, भले कितना अंधेरा जमा करेगा, सूर्य निकलता है और सारा अंधकार नष्ट हो जाता है। उसी तरह जीव जब भगवान की शरण में आ जाता है तो समस्त अपराध उसी प्रकार से भस्म हो जाते हैं जिस प्रकार से एक चिंगारी, चाहे वो कितनी गर्म क्यों न हो, समुद्र के अंदर जाकर नष्ट हो जाती है। उसी प्रकार सारे जीवों के सारे अपराधों को मिलाकर यदि कृष्ण की कृपा के समुद्र के सामने रखा जाए तो वो एक चिंगारी की तरह उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। भगवान की शरण में जाते ही जीव के समस्त अपराध क्षय हो जाते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं 9.31 में, अपिजे सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधो रहे वचमंतव्य। अगर कोई दुराचारियों में सबसे सरोमोर भी हो, अगर दुराचारियों में सबसे बड़ा दुराचारी भी हो और अगर वो मेरा भजन करता है, मेरी शरण में आ जाता है तो साधु रहे वचमंतव्य सम्यक व्यवसित हो, उसे साधु ही मानना चाहिए क्योंकि मेरी कृपा से उसके समस्त अपराध उसी क्षण भस्म हो जाते हैं। तो यहाँ गजेंद्र भगवान की क्वालिटीज बता रहे हैं, मुक्ताय, भगवान मुक्त हैं तभी जीव को मुक्त कर सकते हैं, और क्योंकि भूरी करुणा है, वो करुणा के सागर हैं, तो जीव के समस्त अपराधों को उसी क्षण भस्म कर देते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा लगता है कि यदि कोई अगर बहुत ज्यादा करुणामयी हो लेकिन आलसी हो साथ में, तो वो जाकर भी किसी की सहायता नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ कह रहे हैं, नहीं प्रभु, आपके अंदर आलस्य जरा सा भी नहीं है। नमो लयाय, नमो लयाय का मतलब कभी भी असावधान या अकर्मण्य न रहने वाले, सदैव जीव के ऊपर करुणा करने के लिए तत्पर। भगवान कभी विश्राम नहीं करते, वो तो हम भगवान के जो प्रिय भक्त होते हैं वो भगवान को विश्राम कराते हैं, जगाते हैं, स्नान कर, लेकिन भगवान कंटिन्यूअस तत्पर रहते हैं, कोई समय ऐसा नहीं होता। अब आधी रात को जब भगवान विश्राम कर रहे होते हैं तो किसी भक्त के ऊपर कोई विपत्ति आ रही हो तो क्या भगवान ये सोचेंगे कि अभी तो मैं सो रहा हूँ, अभी मैं नहीं जा सकता उसके कष्ट को दूर करने के? नहीं, ये तो भक्तों का भाव होता है। भगवान तो हर क्षण सावधान रहते हैं कि कब मेरे किसी भक्त के ऊपर कोई कष्ट आ जाए तो मैं उसकी रक्षा करने जाऊं, कब मेरे कहां से मेरे भक्त कोई मुझे पुकारे तो मैं उसको उस संकट से उबारने के लिए। भगवान के लिए यह अत्यंत ही सुंदर नमो लयाय, उनके अंदर कोई असावधानी नहीं है, उनके अंदर कोई आलस्य नहीं है, वो सदैव अपने भक्त की रक्षा करने के लिए तैयार रहते हैं। आगे कहते हैं, स्वांशेन सर्वतनु भृन्मनसि प्रतीत। स्वांशेन सर्वतनु ब्रह्म, यानी कि जितने भी जीव हैं उनके अंदर स्वांशेन यानी परमात्मा के रूप में आप समस्त जीवधारियों के हृदय में मनसी प्रतीत, मन के अंदर रहते हैं प्रत्यक्ष दृश्यो, समस्त कार्यों के प्रत्यक्ष दृष्टा हैं। जीव के हृदय के अंदर रहकर आप समस्त जीव के समस्त कार्यों को प्रत्येक दिशा उनके साक्षी बनकर उनको देखते हैं, उन्हें कार्य करने की प्रेरणा देते हैं, बुद्धि देते हैं, शक्ति देते हैं। आप समस्त जीवों के हृदय में परमात्मा स्वरूप में स्थित हैं। आगे कहते हैं भगवते, भगवते का मतलब है सर्वशक्तिमान। आप समस्त जीवों के कंट्रोलर हैं, सारे जीवों को नियम मन में रखते हैं, नियमित रखते हैं, सारी सृष्टि को अपने कंट्रोल में रखते हैं, आप भगवान हैं। तो यहाँ वो कह रहे हैं स्वांशेन सर्वतनु मनसी प्रतीत, कि जीव के समस्त जीवों के हृदय में आप विराजमान हो, तो यहाँ लगता है कि जीव के हृदय में जब भगवान रहते हैं तो वो सीमित है, है ना। जीव के हृदय में रह रहे हैं तो बाहर कोई भी कार्यकलाप को वो कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन ये कहते नहीं, ऐसा नहीं है। भले ही आप जीवों के हृदय में कैद हो, परंतु फिर भी बृहते, बृहते का मतलब होता है आप सीमित नहीं हो, आप असीम हो, आप सर्वशक्तिमान हो, आप सब कुछ कर सकते हो। जीवों पर कृपा करके उनको भवबंधन से छुड़ा कर अपने धाम में ले जा सकते हो। इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ, नमस्ते, मैं आपकी शरणागति हूँ, कृपया मुझ पर कृपा करो और इस भव सागर से मेरा उद्धार करो। अनुवाद, चूंकि मुझ जैसा पशु ने परम मुक्त आपकी शरण ग्रहण की है, अतएव आप निश्चय ही मुझे संकट में स्थिति से उभार लेंगे। निसंदेह अत्यंत दयालु होने के कारण आप निरंतर मेरा उद्धार करने का प्रयास करते हैं। आप अपने परमात्मा रूप अंश से समस्त देहधारी जीवों के हृदय में स्थित हैं। आप प्रत्यक्ष दिव्य ज्ञान के रूप में विख्यात हैं और आप असीम हैं। हे भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार पेश करता हूँ। श्रील प्रभुपाद जी अत्यंत ही सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्री प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बृहते नमस्ते शब्दों की व्याख्या बृहते श्री कृष्णाय के रूप में की है। भगवान तो कृष्ण हैं, तत्व अनेक हैं, यथा विष्णु तत्व, जीव तत्व तथा शक्ति तत्व, किंतु सबों से ऊपर विष्णु तत्व है जो सर्वव्यापी है। भगवान के इस सर्वव्यापी रूप की व्याख्या श्रीमद् भगवत गीता 10.42 में की गई है, जिसमें भगवान कहते हैं अथवा बहुनयतेन किम ज्ञातेन तव अर्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत। हे कुंती पुत्र अर्जुन, इस विस्तृत ज्ञान की क्या आवश्यकता है? अपने एक अंश से मैं इस संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हूँ और इसका पालन करता हूँ। इस प्रकार कृष्ण कहते हैं कि सारा भौतिक जगत उनके आंशिक स्वरूप परमात्मा रूप द्वारा पालित है। भगवान प्रत्येक ब्रह्मांड में पहले गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं और फिर क्षीरोदक्षाय के रूप में विस्तार करके सभी जीवों के हृदय में, यहाँ तक के परम अणु में भी प्रवेश करते हैं। अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम, प्रत्येक ब्रह्मांड परमाणुओं से ओतप्रोत है और भगवान न केवल ब्रह्मांड के भीतर अपितु परमाणु के भीतर भी विद्यमान है। इस प्रकार वे प्रत्येक परमाणु के में विष्णु के अंश परमात्मा के रूप में स्थित है, किंतु जितने भी विष्णु तत्व हैं वे कृष्ण से अद्भुत हैं। जैसी कि भगवद गीता 10.2 में पुष्टि हुई है, अहम आदिर ही देवानाम, कृष्ण इस भौतिक जगत के देवों ब्रह्मा विष्णु तथा महेश्वर के आदि अर्थात उद्गम है। इसे यहाँ पर उन्हें भगवते कहा गया है। हर व्यक्ति भगवान है अर्थात ऐश्वर्य युक्त है, किंतु कृष्ण ब्रह्मान भगवान है, असीम ऐश्वर्य के स्वामी है। ईश्वर परमः कृष्ण, कृष्ण हर एक के उद्गम है। अहम सर्वस्य प्रभु, यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु तथा महेश्वर भी भगवान श्री कृष्ण से ही उत्पन्न होते हैं। मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, कृष्ण से श्रेष्ठ कोई व्यक्ति नहीं है। अतएव विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि भगवते भ्राते का अर्थ है श्री कृष्ण। कितना सुंदर श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि जिस प्रकार भगवान ने इस सृष्टि की रचना की, सबसे पहले तीन विष्णु प्रकट हुए थे, कारणदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु। तो कारणदक्षाय विष्णु के अंदर से सारे जितने भी यहाँ पर जीव हैं, सारे जीव भगवान ब्रह्मा जी ने सबकी उत्पत्ति की, और फिर उनके जब वो श्वास ले रहे थे तो उनके रोमकूपों से अनेकानेक ब्रह्मांड निकल रहे थे। हर एक ब्रह्मांड के अंदर गर्भोदक्षाय विष्णु आए और वहां पर गर्भोदक्षाय विष्णु कि नाभ से, नाभ कमल से जो ब्रह्मा जी निकले और उन्होंने जितने भी जीवों को उत्पन्न किया उनके अंदर भगवान क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में प्रवेश कर गए। तो ये सब यहाँ पर जिस भगवान की महिमा बताई जा रही है, तो यहाँ कह रहे हैं बृहते नमस्ते का मतलब है वो सर्वशक्तिमान, वो असीम भगवान केवल भगवान श्री कृष्ण ही है। भले उन्होंने गजेंद्र ने कृष्ण का नाम नहीं लिया है, लेकिन वो भगवान कृष्ण की ही स्तुति कर रहे हैं। क्योंकि यदि वो कृष्ण की स्तुति, कोई कोई लोग ऐसे बोलते हैं कि यहाँ पर गजेंद्र साकार स्वरूप की स्तुति नहीं कर रहे हैं, निराकार स्वरूप की स्तुति कर रहे हैं, लेकिन यदि वो किसी निराकार स्वरूप की स्तुति कर रहे होते तो भला भगवान श्री हरि उनकी रक्षा करने के लिए क्यों आते, है ना। फल को देखकर हमें देखना चाहिए कि क्या कार्य क्या हो रहा है। जब उसने भगवान को याद किया तभी तो भगवान उसके रक्षा करने के लिए गरुड़ को छोड़कर आगे बढ़ते हुए, आगे हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से भगवान आ रहे उनकी रक्षा करने के लिए। भगवान का जो वाहन है गरुड़ जी, वो भगवान की मन की गति से चलता है, लेकिन गजेंद्र के बारे में भगवान ने गरुड़ को कहा तो तुम्हारी गति तो बहुत बहुत धीमी है, मेरे भक्त के ऊपर कष्ट आया है, तुम इतना स्लो चल रहे हो। तो भगवान ने गरुड़ को छोड़ दिया और स्वयं आगे निकल गए। तो यहाँ पर गजेंद्र जिस भगवान को प्रणाम करें, स्वांशेन सर्वतनु बृहना मनसी प्रतीत, जो सब जीवों के हृदय में परमात्मा स्वरूप में स्थित है वो केवल भगवान श्री कृष्ण है। इसीलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि भगवते बृहते का अर्थ है श्री कृष्ण को। इस भौतिक जगत में प्रत्येक मनुष्य पशु है क्योंकि वह देहात्म बुद्धि से युक्त है। जैसे यहाँ पर गजेंद्र कहते हैं मादिक प्रपन्न पशु पाश विमोक्षण, तो यहाँ पर श्री रूपा जी बोलते हैं सब पशु हैं। क्यों पशु हैं? श्रीमद् भागवतम में 10.84.13 में कहा गया है यस्यात्म बुद्धि कुणपि त्रिधातु के स्वधि कलत्रादिषु भौम इज्यति यत्तीर्थबुद्धि सलिलेन कर्हि चेत् जनेष्वभिज्ञेषु स एव गोखर। यस्यात्मबुद्धि, आत्मबुद्धि मतलब जो आत्मबुद्धि करता है, किसमें? कोण पे त्रिधातु के, तीन धातु से पृथ्वी जल अग्नि या से बना हुआ ये जो शरीर है वो तीन धातु को इसको बोलते हैं। वैसे तो पंचभूत है लेकिन यहाँ पर तीन धातु लिखा हुआ है कि उससे बने हुए इस शरीर को ही सब कुछ मानता है आत्मबुद्धि। वही समझता है कि यही मैं, यही शरीर हूँ, देहात्म बुद्धि में रहता है और इसी शरीर को संभालना, संवारना, इसी के लिए जीना उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य होता है। तो इसको ही जो परम आत्मा मानता है, जो आत्मबुद्धि रखता है देहात्म बुद्धि, और स्वधि कलस्त्रादिषु भौम इज्यते, जहां पर वो पैदा हुआ है यानी जो शरीर के जन्म स्थान है, भौम यानी जो जन्म स्थान है, जन्मभूमि को ही पूज्य मानता है, और स्वधि कलत्रादिषु यानी कि जो इस शरीर के उपज हैं यानी कि इस शरीर से रिलेटेड जो व्यक्ति हैं उन्हीं को अपना संबंध मानता है। और यत् तीर्थ बुद्धि सलिले न कर ही चित, यत् तीर्थ बुद्धि, जिसकी बुद्धि तीर्थ स्थानों में केवल इसीलिए जाता है कि वहां पर स्नान करेंगे, और स्नान करने के लिए जाते हैं मतलब वो ये सलिले न कर ही चित, वो दिव्य ज्ञानवान जो व्यक्ति होते हैं उनसे भेंट करने के लिए नहीं जाते हैं। जनेषु विज्ञेषु स एव गोखर, तो शास्त्र तो उसे गोखर कहता है कि वही गो है और वही गधा है। अनुवाद देखिए, जो मनुष्य तीन तत्वों से बने हुए शरीर को आत्मा मानता है, जो शरीर के उपजातों को अपने संबंधी मानता है, जो अपनी जन्मभूमि को पूज्य मानता है, और जो तीर्थ स्थानों में दिव्य ज्ञानवान व्यक्तियों से भेंट करने के लिए नहीं अपितु केवल स्नान करने के लिए जाता है, वह गाय या गधे के समान माना जाता है। श्रीमद् भागवतम 10.84.13 इस तरह प्रत्येक व्यक्ति एक तरह से पशु ही तो है, और हर एक पर भौतिक संसार रूपी घड़ियाल आक्रमण कर रहा है। वह न केवल गजेंद्र पर आक्रमण करता है अपितु हम में से हर एक पर आक्रमण करता है, और हम उसके दुष्परिणाम भोगते हैं। वास्तव में घड़ियाल केवल गजेंद्र को पकड़ के नहीं बैठा हुआ है, ये काल रूपी घड़ियाल हम सबको पकड़े हुए हैं। हम सब इस भौतिक प्रकृति के माया के जाल में फंसे हुए हैं, पशु की तरह इसी भौतिक जगत में ही खुश रहना चाहते हैं, इसी भौतिक जगत के व्यक्ति और वस्तुओं से आनंद लूटना चाहते हैं। यही हमारा सबसे बड़ा अज्ञान है और इस अज्ञान से केवल कृष्ण ही हमें मुक्ति दिला सकते हैं। इसलिए श्री प्रभुपाद जी कहते हैं केवल कृष्ण ही हमें इस भौतिक जगत से छुटकारा दिला सकते हैं। निसंदेह वे सदैव हमारा उद्धार करने के प्रयास में लगे रहते हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, वे हमारे हृदयों के भीतर रहते हैं और तनिक भी असावधानी नहीं बरतते हैं अलाय। तो उनका एकमात्र उद्देश्य भौतिक जीवन से हमारा उद्धार करना रहता है। ऐसा नहीं है कि जब हम उनकी प्रार्थना करते हैं तभी वे हमारी ओर ध्यान देते हैं, वे हमारी प्रार्थना करने के पूर्व से ही हमारा उद्धार करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहते हैं। वे हमारे उद्धार के विषय में तनिक भी आलस नहीं करते। अतएव इस श्लोक में कहा गया है, मुक्ताय भूरि करुणाय नमो लयाय। यह भगवान की अहितु की कृपा ही तो है कि वे हमें सदा भगवत धाम वापस ले जाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। ईश्वर मुक्त हैं, अतएव वे हमें भी मुक्त बनाना चाहते हैं और यद्यपि वे निरंतर इसके लिए प्रयत्नशील रहते हैं किंतु हम उनके उपदेशों का पालन करने से इनकार करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर भगवान के उपदेश को लिखते हुए कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, समस्त प्रकार के धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, अहम तो आम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा सुच, मैं तुम्हें समस्त पापों से समस्त अपराधों से मुक्त कर दूंगा, तुम मत डरो मेरे बच्चे, तुम मेरे पास आ जाओ। इतने पर भी वे क्रुद्ध नहीं होते, इसलिए उन्हें यहाँ पर भूरी करुणाया कहा गया है। वे हमें इस कष्टप्रद भौतिक जीवन से उबारने तथा भगवत धाम वापस ले जाने के लिए अत्यंत दयालु रहते हैं। इसलिए यहाँ पर गजेंद्र हमें यह सलाह दे रहे हैं, हमें उपदेश दे रहे हैं कि यदि आप इस भौतिक जगत के पास से छुटकारा प्राप्त करना चाहते हो तो प्रपन्न करो, तो शरणागति हो जाओ उस भगवान श्री कृष्ण के, क्योंकि केवल वो ही हमें इस भव सागर से छुड़ा सकते हैं। जब तक हम भगवान श्री कृष्ण की शरण में नहीं चले जाएंगे तब तक माया की सेवा करते रहेंगे और बारंबार जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहेंगे। इसीलिए हमें कृष्ण का आश्रय लेना चाहिए और प्रेम से भगवान के पवित्र नाम का जप करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और भगवान की पवित्र कथाओं को श्रवण करना चाहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया एक बार फिर से स्टार्ट से पढ़ेंगे, साथ दीजिएगा। श्री बादरायणी रुवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समादाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यम् प्राक्जन्मन्यनुशीक्षितम्। श्री गजेन्द्र उवाच ओम नमो भगवते तस्मै यत्त एतच्चिदात्मकम् पुरुषायादि बीजाय परीशायाभि धीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परः तं प्रपद्ये स्वयं भुवम्। यः स्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचित् विभातं क्वच तत्तिरोहितं अवित् तद्रिक्साक्षुभयं तदीक्षति स आत्ममूलो वतु मां परात्परः कालीन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नशो लोकेषु पालिषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीत् गहनं गभीरम् यस्तस्य पारेभिविरा जते विभु न यस्य देवा ऋषयः पदं विभु जन्तु पुनः कोर्हति कन्तुमीरितुम् यथा नटस्य कृतिभिर्विचिष्टतो दुरत्ययानु क्रमण समावतु दिदिक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनया सुसाधव चरन्त्यलोक व्रतमावृणं वने भूतात्मभूता सुहृदा समे गति न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नामरूपे गुणदोष एव वा तथापि लोका ययसंभवायय स्वमायया तान् यनुकालमृच्छति तस्मै नमः परीक्षाय ब्रह्मणेनन्तशक्तये अरूपायोरुरूपाय नमः आश्चर्यकर्मणे नमः आत्मा प्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनसश्चित्तसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाण सुख संविदे नमः शांताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञान घनाय च क्षित्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूल प्रकृतये नमः सर्वेन्द्रिय गुणद्रष्टे सर्वप्रत्यय हेतवे असै असताय छायायोक्ताय असता छाययोक्ताय सदा भासाय ते नमः नमो नमस्ते खिल कारणाय निष्कारणाय भूतकारणाय सर्वागमनाय महार्णवाय नमोपवरिकाय परायणाय गुणानरिच्छन् नचिदुष्मपाय तत्क्षोभविस्फोर्जितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जिताकं स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि माधक प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय ముక్తాయ భూరి కరుణాయ నమోలయాయ స్వాంశీన సర్వతను బ్రహ్మనసి ప్రతీత ప్రత్యక్తృషి భగవతి బృహతి నమస్తే. ఆత్మాత్మజాప్త గృహ విత్త జనేషు సాక్తై దుష్ప్రాపణాయ గుణ సంగ వివర్షితాయ ముక్తాత్మభీసు హృదయే పరిభావితాయ జ్ఞానాత్మనే భగవతి నమ ఈశ్వరాయ.
आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद. कृपया साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा. हरे कृष्ण.